नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। श्री नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी बधाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रिमंडल की बैठक में बादली और बवाना औद्योगिक क्षेत्र में दो सुविधा केंद्र स्थापित करने को दे दी है मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है, मार्च तक राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 5000 से अधिक कर दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में अब 112 को एकमात्र आपातकालीन नंबर के रूप में लागू किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शल्य चिकित्सा विभाग ने 13 महीनों में 1000 से अधिक रोबोटिक सर्जरी कर बनाया है कीर्तिमान। और दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना का चरण 4 रद्द किया। और अब समाचार विस्तार से। श्री नितिन नवीन ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में संगठन पर्व के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी डॉ के लक्ष्मण ने उनके नाम की घोषणा की। श्री नितिन नवीन को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व के सभी अध्यक्षों के योगदान का अभिनंदन किया। श्री मोदी ने कहा कि नितिन नवीन ने हर कार्य को बखूबी निभाया है।
माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। नितिन जी ने हमेशा जो जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री नितिन पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि संगठन की सबसे छोटी इकाई से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुई। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा पर जनता का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है।
जनता जनार्दन की सेवा ये हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही। हमने सत्ता को सुख का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। अगर बीते 11 वर्षों की ही बात करें तो भाजपा की यात्रा जन विश्वास अर्जित करने की अद्भुत यात्रा रही है।
नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस पद पर पहुंचने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं को भी धन्यवाद दिया है।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आत्मसात करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके सामने रखी है और आज 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को इस विकसित भारत के सपने के साथ जोड़कर देश को आगे बढ़ाने में लगा है। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बधाई दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी नितिन नवीन को भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि श्री नवीन एक निष्ठावान और कुशल संगठनकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन की गौरवशाली वैचारिक यात्रा को नया विस्तार मिलेगा और कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को भी गति प्राप्त होगी। श्रीमती गुप्ता ने अंत्योदय और राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ संगठन के निरंतर नई ऊंचाइयों को छूने की कामना की। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने श्री नवीन को बधाई देते हुए कहा कि उनका चयन संगठन की परिपक्वता और कार्यकर्ता आधारित संस्कृति का सशक्त प्रमाण है। श्रीमती गुप्ता और श्री सचदेवा सहित अन्य कार्यकर्ता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत समारोह में भाजपा मुख्यालय में उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बादली और बवाना के औद्योगिक क्षेत्र में दो सुविधा केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्रीमती गुप्ता ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार शहर के छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को विश्व स्तर पर प्रतिबद्ध बनाने के लिए कृतसंकल्प है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्योगों को साझा मंच प्रदान किया जाएगा, जहां वो बिना किसी भारी निवेश के आधुनिक मशीनों, प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण का भी लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये परियोजना की अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपए तय की गई है, जिसमें प्रत्येक केंद्र पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि इस वर्ष मार्च तक राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 5000 से अधिक कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक शहर में 3000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा चुकी हैं। एक रिपोर्ट।
श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि कल से दिल्ली परिवहन निगम की बसों के पश्चिम क्षेत्र के लिए नए रूट युक्तिकरण की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य अंतिम छोर तक पहुंच को बेहतर बनाना और सार्वजनिक परिवहन सेवा की विश्वसनीयता को बढ़ाना है। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के हर नागरिक के लिए एक सशक्त और अधिक कुशल आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का निर्माण कर रही है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
राजधानी दिल्ली में अब 112 को एकमात्र आपातकालीन नंबर के रूप में लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS 2.0 के अंतर्गत पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी सेवाओं को 112 नंबर में समाहित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कदम से किसी भी आपदा या आपात स्थिति में नागरिकों को त्वरित और प्रभावी सहायता मिल सकेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि ERSS 2.0 एक आधुनिक एकीकृत एकल हैंडलिंग प्रणाली है, जिसमें सभी आपातकालीन कॉल, आपातकालीन मोबाइल ऐप, पैनिक बटन, SMS और वेब अलर्ट एक ही पब्लिक सेफ्टी आंसरिंग पॉइंट पर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य राजधानी में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सरल, तेज और विश्वसनीय बनाना है, जिससे जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ दिल्ली को स्मार्ट और संवेदनशील राजधानी के रूप में विकसित किया जा सके। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज कहा कि विधायी जवाबदेही जनता और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच एक जीवंत और गतिशील संबंध है, जो लोकतंत्र की नैतिक और संवैधानिक आधारशिला है। लखनऊ में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने संवैधानिक लोकतंत्र में विधायिकाओं की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, विधायिकाएं सिर्फ प्रक्रियात्मक संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन की सबसे प्रत्यक्ष और सशक्त अभिव्यक्ति हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने कहा है कि पिछले 13 महीनों में एम्स के शल्य चिकित्सा विभाग ने 1000 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरी की है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुनील चुंबर ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी से पारंपरिक ओपन सर्जरी की तुलना में ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द में 50% की कमी आई है। श्री चुंबर ने रोगी देखभाल को और बेहतर बनाने और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में वैश्विक प्रगति के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए एम्स की प्रतिबद्धता पर बल दिया है।
हम लोगों ने पिछले 13 महीने में 1000 रोबोटिक ऑपरेशंस किए हैं। ये एक तरह का माइलस्टोन है हमारे सर्जरी ब्लॉक के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए और हमारे देश के लिए भी। और जैसा कि हम ढूंढ रहे थे, शायद किसी और विश्व में भी किसी सेंटर में इतने ऑपरेशन नहीं हुए होंगे। और ये सब इसलिए हो पाया कि हमारे 25 फैकल्टी मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व थे।
दिल्ली नगर निगम ने आज निगम मुख्यालय स्थित अरुणा आसफ अली सभागार में विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर मातृभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निगम कर्मियों को राजभाषा रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन निगम के स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा द्वारा किया गया। श्रीमती शर्मा ने कहा कि हिंदी भाषा हिंदुस्तान की आन बान और शान है। उन्होंने कहा कि हमारी भावनाएं हिंदी में ज्यादा अच्छी तरह से प्रकट होती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी को वैश्विक स्तर पे पहुंचाने की सभी की जिम्मेदारी है। अध्यक्षा ने कहा कि जहां संभव हो लोगों को हिंदी में हस्ताक्षर करने चाहिए तथा बच्चों को भी हिंदी सिखानी चाहिए। इस मौके पर निगम कर्मचारियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
उत्तर रेलवे के लेखा विभाग ने आज प्रशिक्षण से दक्षता की ओर नामक 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का समापन समारोह राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में आयोजित किया। ये निर्माण कार्यक्रम इस महीने की 15, 16 और 19 तारीख को आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 52 सप्ताह में 52 सुधारों के दृष्टिकोण से प्रेरित था। मत्स्य पालन विभाग कल नई दिल्ली में 83 भागीदार देशों के राजदूतों उच्चायुक्तों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन की अध्यक्षता मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। एक रिपोर्ट।
मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय ने कहा है कि सरकार एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन के भागीदार देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ इस सम्मेलन का आयोजन कर रही है। मंत्रालय ने बताया है कि यह सम्मेलन समुद्री खाद्य व्यापार, बाजार पहुंच, नियामक सहयोग और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारियों को मजबूत करने के उभरते अवसरों पर एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। सम्मेलन में मूल्य वर्धित समुद्री खाद्य व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ निवेश, संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के रास्ते तलाशने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण कल से बृहस्पतिवार तक कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि कल प्रेम कुंज क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित रहेगी। वहीं बृहस्पतिवार को नांगलोई, पश्चिम विहार, मुंडका, हिरण कूदना, कमरुद्दीन नगर, निहाल विहार, राजधानी पार्क, मोहन गार्डन और आसपास के इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। आपातकाल की स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर संपर्क कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना का चरण 4 रद्द कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में सुधार के बाद ये निर्णय लिया गया है। आज का वायु गुणवत्ता सूचकांक 378 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। एक रिपोर्ट।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि चरण 1, 2 और 3 के अंतर्गत की गई कार्रवाई लागू रहेगी। इस दौरान मिट्टी के काम, खाई खोदने और सड़क निर्माण गतिविधियों तथा बड़ी मरम्मत सहित सभी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS4 डीजल से चलने वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों को भी राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। केवल उन्हीं वाहनों को अनुमति होगी जो आवश्यक वस्तुओं का परिवहन तथा आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
राजधानी में आज मौसम साफ रहा, धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी है बधाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रिमंडल की बैठक में बादली और बवाना औद्योगिक क्षेत्र में 2 सुविधा केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मार्च तक राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 5000 से अधिक की जाएगी। राजधानी दिल्ली में अब 112 को एकमात्र आपातकालीन नंबर के रूप में लागू किया जाएगा और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शल्य चिकित्सा विभाग ने 13 महीनों में 1000 से अधिक रोबोटिक सर्जरी कर बनाया है कीर्तिमान। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।